कई अपने जो है पतियों के साथ में घूम रही थी और बात कर रही थी, घर में बात कर रही थी, तो कहते हैं वो अपने पतियों को छोड़ छोड़ के बाहर आ गई। इस प्रकार से वो सबका सब जो है महंगे धातुओं से बना हुआ लंका का राज प्रसाद और दूसरे महल सब जो है स्यंद मानान सब जो है पिघल पिघल करके बहते हुए वहां पर बहने लगे। वहां इतनी अग्नि थी लेकिन अग्नि है वो काष्ठों से तृप्त नहीं हुई और हनुमान जी महाराज राक्षसों को जला करके तृप्त नहीं हुए और ये वसुंधरा है इन राक्षसों के जलने पर भी तृप्त नहीं हुई, किसी को भी तृप्ति नहीं हुई। हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार से लंका के अंदर चारों तरफ आग लगाई, जिस प्रकार से त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने आग लगाई थी, इस प्रकार से आग लगाई, खूब आग हो गई, चारों तरफ अग्नि अग्नि हो गई, लंका सारी धू धू करके जलने लगी। हनुमान जी महाराज लंका के एक पर्वत के ऊपर जाकर के बैठ गए। हनुमान जी महाराज जी खड़े खड़े देखते हैं कि कौन सा भाग है जहाँ आग नहीं है, परंतु कोई उनको ऐसा भाग दिखाई नहीं दिया। सब जगह चारों तरफ लंका में आग है, ऐसे लगने लगा कि जैसे प्रलय काल की आग जग रही हो और वो आग की लपटें बहुत ऊंचे लोग तक दिखाई दे रही थी। उसके बाद बहुत ऊंचे तक जो है धुआं दिखाई दे रहा था, करोड़ों करोड़ों मानो सूर्य एक साथ उदित हो गए हो इस प्रकार की वहां पर सबको बड़ी भारी गर्मी लग रही थी। शब्दे रने की रसनी प्ररूढ़ बिंदन निवाण्डम बबभौ महाग्नि, जैसे ब्रह्मांड को जलाने के लिए बहुत बड़ी अग्नि का अवतार हुआ हो ऐसे लंका जलती हुई एक रूप में जलती हुई दिखाई देने लगी। अब आकाश से मानो अग्नि नीचे गिर गई हो और नीचे गिर करके और ये यहाँ पर निर्वाण धूमा कुल राजयश्चय, और उस समय में जब वायु चलती थी तो एक देखो कैसा सुंदर वर्णन करते हैं, धुआं ऊपर है वायु चलती है तो एक काला काला धुआं एक अलग ही रह जाता है, वायु चल करके धुएं को और अग्नि की लपेटों को अलग करता है तो धुआं यूं अलग सही चलता रहता है। वे धुएं ऐसे लगने लगे नीलोत पलाभा प्रचकाशिरे भ्रा, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बादल है वो आकाश के अंदर सुशोभित होते हुए। अब भाई राक्षसों ने आपस में विचार करके कहा हमारे रावण हमारे राक्षस राज रावण इंद्र के साथ बैर कर चुके हैं, अतः आज इंद्र स्वयं बांदर का रूप बना करके आया है। नहीं नहीं इंद्र नहीं आया, इंद्र की तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं, यमराज आए हैं या इस समुद्र में से उठ करके वरुण देवता आए हैं या कोई वायु आया है या कोई रुद्र ही आया है या अग्नि आया है या सूर्य आया है या कुबेर आया है जिसके साथ इसकी लड़ाई चलती है या चंद्रमा आया है। न बानर वयम स्वयमेव काल, ये बानर नहीं है, साक्षात मृत्यु ही बानर के रूप में यहाँ आई है। ओह क्या प्रजापति ब्रह्मा जी अपने वरदान को पूरा करने के लिए यहाँ आए, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था रावण को कि बानर के अलावा और मनुष्य के अलावा तुम्हारी किसी से मौत नहीं होगी, तो संभवतः वो पितामह ब्रह्मा ही यहाँ बानर का रूप बना करके आया होगा और या कोई विष्णु ही बानर के रूप में आया होगा, पता नहीं कौन आया कहाँ से आया, परंतु ये अपनी माया के अंदर छिपा हुआ कोई दूसरा ही प्राणी है, ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है। राक्षस बिचारे इधर उधर दौड़ने लगे, प्राणियों का समुदाय इधर उधर कहाँ जाए, वृक्षों में सब जगह आग लगी और उस आग की लपट जंगलों तक पहुँच गई, तो सब लंका इस प्रकार से जलने लगी राक्षसों के साथ में, घोड़ों के साथ, रथों के साथ, हाथियों के साथ और बड़े बड़े पक्षियों के साथ, तो सारी लंका एक तरह से रोने सी लग गई थी, सब लंका रोने लगी। कोई बोलता है हाथाता पुत्रक कांत मित्र हे जीवितांगांक हतम सुपुण्यम, पिताजी कहाँ हो, बेटा मैं इधर हूँ, तुम बेटा किधर हो, फिर और अपनी स्त्री के लिए पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, प्राणनाथ मैं इधर हूँ, मित्र तुम किधर हो, सब यही ये आवाजें आ रही है। और ऐसा लगने लगा कि लंका का पुण्य आज इस आग के अंदर जल करके समाप्त हो गया। राक्षस लोग बहुत प्रकार के शब्द बोलते हैं और बड़ा भयंकर शब्द है, बचाओ बचाओ हम आग में फंस गए, अब सारे ही फंसे हुए, कौन किसको बचाए। उस समय में लोग चौराहे पर इकट्ठे होते हैं, पर चौराहे पर भी आग लगी हुई है, गलियों में आग लगी हुई है, मार्गों में आग लगी हुई है। बड़े बड़े शूरवीर समाप्त हो गए। हनुमान का क्रोध देख करके सारी लंका ऐसे लगने लगी जैसे लंका को आज कोई बड़ा भारी शाप लग गया हो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सब बड़े दुखी थे। और उस अग्नि के अंदर महामनस्वी हनुमान जी महाराज ने ऐसा वहां पर क्रोध प्रकट किया जैसे ब्रह्मा का क्रोध साक्षात ब्रह्म लोक से लुढ़क करके और लंका में आकर हमको प्रकट दिखता हो। अब वन के वन जगने लगे, राक्षस लोग मरने लगे, लंका पूरी दहकने लगी, माने वो एकदम जलने लगी। हनुमान वहाँ पर एक पर्वत के ऊपर यों वीर वेश के अंदर खड़े हुए सारी लंका का निरीक्षण कर रहे हैं। राक्षसों को देखा, जंगल को देखा, सबको देखा और सबको देख करके हनुमान जी महाराज ने मनी मन से राम जी के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज सीता तो देखी सो देखी, लंका भी देखी और लंका ऐसी देखी ऐसी देखी कि वो लंका फिर आपको देखनी न पड़े, ऐसी लंका देखेगी आप। उसके बाद भाई वहाँ हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर खड़े हैं, ऐसे महामनस्वी बलवान शूरवीर हनुमान को देख करके देवता लोग दुंदुभियां बजाते हैं, देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, देवता लोग गंधर्वों को साथ लिए हुए हैं, विद्याधरों को साथ में लिए हुए हैं। हनुमान से कहते हैं कि हनुमान तुमने आज लंका में ये पराक्रम दिखाकर बहुत बड़ा काम किया है। भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जगत् परां प्रीतिमतुल्य रूपां, उन लोगों को बहुत विलक्षण प्रसन्नता हुई। हनुमान जी महाराज सबको तोड़ ताड़ करके माने जंगलों को तहस तहस करके लंका को जला जलू करके और कभी किधर ऐसे फुदकते फुदकते हनुमान जी महाराज ने देखा कि सब जगह आ गए। तब हनुमान जी जोर से जाकर समुद्र के अंदर कूद गए। समुद्र के अंदर कूदने के बाद फिर देवताओं ने हनुमान जी के ऊपर जो है फूलों की वर्षा की। उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य कि हनुमान में इतना बल है, कैसा बल आया हुआ है, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वे आपस में बात करते हैं, वायु से कहते हैं कि वायु तुमको बहुत 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 बधाई है, आज तुमने हमारा बहुत तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुमने बहुत काम करवाया। ये सब काम करने के बाद वो वापिस वहाँ समुद्र से फलांग मार करके और लंका के उस स्थल पर आए जहाँ हनुमान जी बैठे हुए थे। वहाँ बैठते ही हनुमान जी का चेहरा उतर गया। अरे राम, अरे ये मैंने क्या किया। अब उनके मन में बड़ी चिंता हुई, सारी लंका जलाई, ये तो मैंने अच्छा नहीं किया। अब ध्यान देना हो हनुमान जी महाराज की बातें अपने लोगों के लिए काम की बहुत है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लंका दहन करके मैंने बड़ा काम किया, ये तो मैं अपने मन में मान रहा हूँ, लेकिन लंका दहन करके मैंने आज संसार में बड़ा नीचा काम किया, मेरे ऐसा कोई नीचा आदमी नहीं, बड़ा नीचा काम किया। संसार में भी महापुरुष बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, जो अपने मन के अंदर क्रोध को जीत लेते हैं। धन्या खलु महात्मानो ये बुद्धिया कोप समुत्थितम, जो क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है उसको पहली बार पैदा ही ना होने दें, और किसी कारण से क्रोध पैदा हो गया तो उस क्रोध को वही अपने अंदर ही शांत कर लेते हैं। ये शूरवीर तो उस बात में है, लोग मेरी शूरवीरता बताएंगे तुमने लंका को जलाया, कुछ नहीं कायर का काम था। क्यों? क्योंकि क्रोध के वश में मैं हो गया तभी तो मैंने लंका को जलाया। क्रोध के वश में होता है वो तो कायर होता है, शूरवीर वो है कि जो क्रोध के वश में न हो। जो काम के वश में न हो, क्रोध के वश में न हो, लोभ के वश में हो, वो है सूरवीरता। मैंने देखो क्रोध के अंदर आकर की क्या कर दिया। अपने क्रोध को जीते बिना कोई आदमी समझता है कि मैंने वो जीत लिया, वो जीत लिया, वो प्राप्त कर लिया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया, केवल अपने संकल्पों की गुलामी प्राप्त की है। निरुन्धन्ति महात्मानो, वे महापुरुष बहुत ही जो है श्रेष्ठ है, जो क्रोध को जीतते हैं, वो सागर को जीत लेते हैं, सागर को मुट्ठी में रख लेते हैं। वे महात्मा जो क्रोध को जीतते हैं, वो आकाश को मुट्ठी में कर लेते हैं। जो महात्मा क्रोध को जीतते हैं, वे सारे संसार को जीत लेते हैं। गीता में कहा ना कि उन्होंने सारी सृष्टि को जीत लिया, जिन्होंने जो है स्वर्ग जीते हैं, उन्होंने स्वर्ग जीत लिया, सृष्टि को जीत लिया। क्रुद्ध पापम न कुरियात कहे, एक क्रोधी आदमी क्या पाप नहीं कर बैठता है। एक क्रोधी आदमी कितना बड़ा पाप करता है कि अपने से बड़ों के साथ भी वो बैर रखकर बड़ों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। एक क्रोधी आदमी अपने कठोर वचनों से सत्पुरुषों पर भी आक्षेप करने लगता है, उनको भी भला बुरा बोलता है। क्रोधी आदमी माँ का आदर नहीं करता, बाप का आदर नहीं करता, बड़ों का आदर नहीं करता, गुरुजनों का आदर नहीं करता, साधु पुरुषों का आदर नहीं करता। वो क्रोधी आदमी कुछ भी काम कर लेता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में तो काम करता है, लेकिन वो अपने हाथ से अपने गले के ऊपर छुरी चलाता है। वो वाच्य अवाच्य का ध्यान नहीं रखता, उसको कुछ होश नहीं रहता, कार्य अकार्य का होश नहीं रहता। वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, एकदम क्रोध के अंदर पागल होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर उठे हुए क्रोध को क्षमा रूपी शस्त्र से जीत लेता है, वो व्यक्ति वास्तव में इतना श्रेष्ठ है कि उसको पुरुष कहना ही उसी को चाहिए, बाकी कोई पुरुष नहीं है, सब पशु है। सवई पुरुष उच्चते, पुरुष किसको बोलते हैं कि जिस प्रकार से सांप अपने ऊपर आए हुए कैंचली को छोड़ दे, ऐसे अपने क्रोध को छोड़ दे। लोग कहते हैं कि क्रोध को जीतना बड़ा मुश्किल है। देखो भाई, महाराज जी तो कई बार बात बताते थे इस बात। कोई कहते हैं कि महाराज क्रोध बहुत आता है, तो महाराज जी फरमाते कि क्रोध आए तो एक काम करो, जहां हमको क्रोध आ रहा है वहां एक बार जगह को बदल दो, तत्काल उस जगह को बदल दो। उस जगह के अंदर, क्योंकि कई देर तक सोचते क्रोध एकदम नहीं आता है, पहले अंदर कई देर तक विचार पैदा होते होते फिर क्रोध आता है, उस जगह को छोड़ दो। और क्रोध आने लगे तो उस समय क्या करो, अपने जल लेकर के, ठंडा ठंडा जल ले, जल लेकर के आंखों के ऊपर जोर जोर से उसको छिड़को, 5-7 बार आंखों पर छिड़क करके, और फिर अपने दाहिने में जल लेकर के, और फिर कुल्ला करो, कुल्ला कर करके, और वो पानी बाहर थूकते रहो, कुल्ला करो, थूको, जल छिड़को, एकदम ठंडक आ जाएगी। और फिर जो है बाहर चले जाओ, अलग चले जाओ, कहीं बैठ करके और 100 बार राम का नाम, राम एक, राम दो, राम तीन, राम चार, राम पांच, राम छह, ऐसे करके 100 बार राम का नाम लो। और ये व्रत करो कि भाई जिस दिन क्रोध आएगा उस वक्त उस टाइम भोजन नहीं करेंगे। जैसे सुबह क्रोध आ गया तो भाई आज सुबह भोजन नहीं, भोजन से पहले क्रोध आ जाए तो भोजन नहीं करेंगे। और भोजन अब देखो, ये तो आत्मानुशासन है, अपने आप को दंड देना है। कोई देखे पहले भोजन कर लेंगे बाद में क्रोध कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो भाई जो है आत्मानुशासन नहीं है, ये तो आत्मवंचना है। और कोई ये देखे कि भाई अब क्या करें, भाई हमने दोनों समय भोजन कर लिया, बाद में क्रोध आया तो दूसरे दिन एक समय भोजन मत करो। ये थोड़ा सा भी यदि हम आत्मानुशासन करेंगे, अपने आप को स्वयं ही अनुशासित करेंगे तो ठीक रहेगा। और परिवार के अंदर देखो, यदि कोई निरपराध व्यक्ति भी क्रोध करता है, मतलब हमारा तो कोई इसमें दोष है नहीं, हमने क्रोध किया तो क्रोध किया, ये तो दोष हो ही गया ना। इसलिए यदि क्रोध को जीवन से हटाना चाहते हैं तो अपने मान को एक बार कुचलना पड़ेगा और जिसके प्रति क्रोध किया है उससे हृदय से क्षमा याचना करनी चाहिए। अपने से छोटा है तो कैसे करें, क्योंकि उससे उसकी आदत बिगड़ेगी। तो उस समय में क्या, वो जब गहरी नींद में सोए उसके पास में बैठ जाओ और वो सांस लेता हो ना, उस समय उसको कहो कि अपने मन से ही मुझसे गलती हो गई, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। यदि मेरी बात सच्ची है तो सच्ची बात को मिठास से भी तो कह सकता हूँ, क्रोध करने से क्या होगा, क्रोध करने से मेरी सच्ची बात भी खराब हो गई। जैसे कितना बढ़िया लड्डू हो, बहुत बढ़िया लड्डू है, बादाम उसमें डाला हुआ है, पंधारी का लड्डू है, बहुत अच्छा है, कितना ही बढ़िया है, परंतु यदि लड्डू कहीं जो है गलत जगह पर रख दिया जाए, गंदी जगह पर रख दिया जाए, तो वो लड्डू गंदा हो गया। कैसा भी तो लड्डू है, लड्डू होने से क्या हुआ, ये गंदी जगह पर रख दिया ना, इसलिए कोई काम का नहीं। तो हमारी बात चाहे कितनी अच्छी हो लेकिन भाई यदि क्रोध के साथ कही है तो उसका अच्छापन तो हमने खत्म कर दिया और जो है ठीक नहीं किया। यदि हम सच्चे हैं तो क्रोध क्यों आए। महाराष्ट्र के सामने एक बार दो आदमी थे, कोई बात चली तो एक को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया और कहने लगा महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहुत बोले बोले महाराज कह दे चुप रहे। चुप रहने के बाद जब वो खूब अपनी बात कह गया तो कहा कि तेरा कसूर है, ये क्यों कि तेरा क्रोध क्यों आया। तो कहा महाराज सच्ची बात के ऊपर तो क्रोध आएगी, सच्ची बात पर क्रोध आता ही नहीं, हमारी बात सच्ची उस पर क्रोध क्यों आए। क्रोध आने का अर्थ है कि हमारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती है। तो उस समय में जो बात है, देखो एक बात और है, यदि कोई आदमी हमसे जिद्दोजहद पर अड़ जाए और लगे कि क्रोध आने वाला है तो क्रोध आवे तो क्या करो, उस समय हंस दो, बनावटी हंसी है तो हंस दो। यो हंसने से क्या होगा, अंदर की जो क्रोध की जो हवा बन रही है अंदर, ऐसा करने हवा निकल जाएगी, वैसा क्रोध आ नहीं सकता। उसे पानी की भी बात बताई, एक ही हवा की बात बताई, बनावटी हंसी हंस दो और उसको कह दो देख भाई आप जो बोल रहे हो उससे क्रोध आने की संभावना दिखती है, लेकिन मैंने विचार कर लिया कि क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा उसको बोल दो फिर क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि फिर क्रोध करेंगे तो शर्म आएगी, इसलिए वो क्रोध नहीं हो सकता। इसलिए कई उपाय हैं। तो बताया कि न अकार्यमस्ति क्रोधस्य, क्रोध आ जाने पर मनुष्य के लिए कौन सा ऐसा अकार्य कार्य है जिसको वो न करे, सब काम कर देता है। अपने क्रोध को जो अपने जीत लेता है वही वास्तव में सवई पुरुष है। पुरुष तो वही होता है जो काम क्रोध लोभ को जीत लेता है। देखो हमको मानव शरीर मिला है, ये किस बात के लिए मिला है। महर्षि बोलते थे कि भाई यदि ये सुख भोगने के लिए मिला तो सुख तो देवताओं को हमसे अच्छा मिलता है, फिर मानव की महिमा देवताओं से बढ़कर क्यों है। और क्या ये मानव शरीर कर्मों का फल भोगने के लिए मिला तो कर्मों के फल भोगने के लिए नरक बहुत है, फिर मानव शरीर को जो है नरकों से नीचा बताना चाहिए, नरकों से भी ऊंचा बताया, देवताओं से भी ऊंचा बताया, किस बात के लिए कि देवता लोग काम को नहीं जीत सकते, क्रोध को नहीं जीत सकते, लोभ को नहीं जीत सकते, अहंकार को नहीं जीत सकते, बस इस कारण से देवता लोग मानव से नीचे हैं, बाकी मानव इन सब से नीचा है, पशुओं से भी नीचा बताया गया। तो सवई पुरुष उच्चते, पुरुष संज्ञा उसी की होती है कि जो इस प्रकार से जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है, वही वास्तव में पुरुष है, नहीं तो बाकी सांस लेने वाला एक मुर्दा है। मुर्दा सांस लेने वाला मुर्दा है जो अपने काम क्रोध के बस हो जाता है, धिक्कार है उसकी, उसकी बुद्धि को बड़ा धिक्कार है। हनुमान जी महाराज कहते हैं चाहे उसमें कितनी ही अकल हो, चाहे वो कितनी बातें जानता हो, चाहे वो कितना ही लंबे चौड़े भाषण देता हो, चाहे वो कितनी बातें करे, लेकिन भिगस्तुमाम सद्बुद्धिम निर्लज्जम पापकृत्तमम, कहते हैं वो तो वास्तव में बिल्कुल निर्लज्ज है, वो पाप है कि तुम क्रोध क्यों करते हो। देखो एक संतों ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर कुछ आध्यात्मिक चीजें भी रहती हैं, क्रोध करने से जो आग होती है, क्रोध की जो आग होती है वो आग हमारे शरीर में रहने वाले जो आध्यात्मिक तत्व है उनको जलाती है। और हमारे शरीर में बुखार आता है तो शरीर बहुत गर्म होता है, 104, 105, 106 डिग्री तक बुखार आ जाए, बहुत गर्म होता है शरीर, बहुत ही गर्म होता है। पर उस गर्म शरीर से हमारे आध्यात्मिक तत्व नहीं जलते, लेकिन क्रोध की अग्नि से आध्यात्मिक हमारी शक्ति है वो शक्ति जलने लगती है। इसलिए क्रोध से बहुत बराबर बचते रहना चाहिए। अचिंतित्वात् उताम सीताम अग्निदम स्वामी घातितम। तो हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि क्रोध के अंदर मैंने लंका को जला दिया और सीता इसके अंदर थी, सीता भी इस लंका के अंदर जल गई, ये मैंने क्या काम किया। यदि दग्ध्वा त्वयम् सर्वा नूनायम आर्यापि जानकी, सारी लंका जली है, सारी लंका जली है तो किसी प्रकार से सीता तो बच भी तो नहीं सकती ना, सीता कैसे बचेगी। और ये कार्य मैंने बड़ी भारी मूर्खता से किया। ये राम, मेरे लंका को जला के क्या बड़ा काम किया। राक्षसों को मारना अलग बात थी, लंका को जलाना ये तो कोई अर्थ ही नहीं रखता। सीता भी तो इस लंका के अंदर है, वो जल गई ना। तो जिस सीता की प्राप्ति के लिए राम जी ने इतना उद्योग किया, जिस सीता की प्राप्ति के लिए राम जी ने बाली को मारा, जिस सीता की प्राप्ति के लिए राम जी ने सुग्रीव को राज्य दिलाया, और जिस सीता की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ लंका में समुद्र को पार करके आया, वो एक क्रोध के अंदर आकर मैंने लंका को जला करके सीता को जला दिया, ही क्या काम किया। थोड़े से कार्य के लिए कि थोड़ा अपना बल दिखाऊं, बस कितने के अंदर मैंने बिना विचार के लंका को जला करके मूलक क्षय कर दिया, जानकी नष्ट हो गई। क्योंकि लंका का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो मुझे बिना जलता हुआ नजर आए। सर्वा भस्मी कृता पूरी, सारी नगरी भस्म हो गई, क्या करूं, ये सब मेरी बुद्धि का अपराध है, क्या करूं। मैं राम जी को मुंह दिखाऊंगा, क्या मैं सुग्रीव के पास जा सकूंगा, क्या मैं बंदरों के पास जाऊंगा कि मैंने सीता की खोज कर ली, सीता के सामने बात कर ली, सीता के सामने प्रतिज्ञा कर ली, और राम के खूब मैंने आश्वासन भी दे दिए, और सीता की मैंने पहचान भी ले ली, और उसके बाद मैंने सीता को जला दिया। कौन जाएगा उधर, जाने की बात हो तब ना, आग जगी रही है, ये बिचारे राक्षस लोग जल रहे हैं, मुझे मेरे जलाने में क्या है, मैं जल करके खत्म होता हूँ इसमें, इसी आग के अंदर मैं भी कूद जाता हूँ। शरीरम मीय सत्वानाम दद्य सागर वासिनाम, यदि आग में जलने से मुझे पीड़ा हो तो सागर के अंदर जाकर बैठ जाऊं, ये बिचारे जीव जंतु खा जाएंगे, वही ठीक है। मैं किस हिसाब से राम जी के पास जाऊं, किस हिसाब से लक्ष्मण से बात करूं, क्या मैं जाकर राम जी को ये कहूं कि महाराज आप अपना बाण लीजिए और वो बाण मेरे छाती में लगाइए क्योंकि मैंने पाप किया है। नहीं नहीं नहीं, यदि राम जी मेरे छाती में बाण लगाएंगे तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने जो पाप किया है उस पाप का फल तो कितने जन्मों तक नरक भोगने का होना चाहिए ना। अतएव राम जी से मैं बाण लगने की क्यों प्रार्थना करूं, ऐसा करने से मेरे मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति होना ठीक नहीं है। आज मैंने दुनिया में बता दिया कि बांदर लोग कैसे बेसमझ होते हैं और बंदरों की बुद्धि कैसी चंचल होती है। आहो, मैंने विचार नहीं किया, ईश्वरेणापि यद्रागात मया सीता न रक्षिता, मुझे आग ही लगानी थी, कुछ भी करना था तो सीता को मैं कह देता कि देखो सीते तुम यहाँ से हटकर के इस पर्वत पर आ जाओ, सीता को मैं पहले अलग कर देता उसके बाद आग जलाता समर्था में, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया। सीता के नष्ट हो जाने पर राम जी मर जाएंगे, राम जी के मर जाने के बाद लक्ष्मण जी मर जाएंगे, लक्ष्मण जी के मर जाने के बाद सुग्रीव मर जाएंगे, सुग्रीव के मरने के बाद भरत जी भी मर जाएंगे, शत्रुघ्न जी भी मर जाएंगे, राम जी की माताएं मर जाएंगी, सुग्रीव का अंगद मर जाएगा, सुग्रीव की स्त्रियां मर जाएंगी, जितने यहाँ समुद्र के किनारे बैठे बांदर हैं ये मर जाएंगे, इनका सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, व्यक्तम लोक विनाशन है। अरे फिर तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर तो सृष्टि का अभाव हो गया, सारी सृष्टि को मारने का पाप लगेगा। ऐसी वो चिंता करके बैठ गए और हनुमान जी महाराज बैठे बैठे बुरी तरह से रोने लग गए। रोते 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 हनुमान जी के एक विचार आया, सीता जल सकती है क्या? सीता के पास में अपना धर्म है, जिस सीता को रावण अभी तक छू नहीं सका, जिस सीता को रावण अपनी पत्नी नहीं बना सका, वह सीता अग्नि के अंदर, सामान्य अग्नि के अंदर जल जाए, अग्नि उसको छू ले, रावण के सामने अग्नि भी डरता रहता है, उस रावण ने सीता का कुछ भी बिगाड़ नहीं किया, अग्नि क्या बिगाड़ कर लेगा? इन धर्मात्माओं के पास में एक अलग धर्म की शक्ति होती है, और उसमें विशेषतः स्त्री के पास और विलक्षण शक्ति होती है। धर्म की शक्ति पुरुष की अपेक्षा स्त्री के पास बड़ी विलक्षण होती है। सीता यदि चाहती तो अपने शाप के द्वारा रावण को भस्म कर सकती है, परंतु स्त्री धर्म संग्रहिणी होती है, धर्म को इकट्ठा करना जानती है, धर्म को खर्च नहीं करना जानती। राम जी के प्रभाव में रहने वाली सीता, राम जी के चरणों में निवास करने वाली सीता, क्या ही मामूली सी अग्नि से जल जाएगी? एक चंचल बंदर के द्वारा की हुई ऐसी हरकतों के अंदर सीता का शरीर चला जाएगा, सीता मर जाएगी, ऐसे कैसे संभव है? यन्माम दहन कर्मायम कर्मायम नादहत हव्यवाहन। ये बड़ा अच्छा हुआ कि सीता शायद बच गई हो। नहीं नहीं, ये तो मेरा मन का अनुमान है, जब अग्नि के अंदर सब जल रहे हैं तो सीता कैसे बचेगी? नहीं नहीं, सीता जो है नष्ट हो सकती है। फिर विचार किया कि देखो, जिसके पास में तपस्या की अग्नि मौजूद है, वो तपस्या की अग्नि जिसके पास है, वो अग्नि उसकी सब अग्नियों से रक्षा करने वाली है, उस सीता को ये मेरे द्वारा पैदा की हुई अग्नि कैसे जलाएगी? ये अग्नि देवता नहीं है, ये अग्नि तो वो अग्नि है भाई, जो अग्नि मैंने यहाँ पैदा की है। अग्नि तो अग्नि देवता तो वो है जो स्वर्ग में रहने वाला है। ऐसे वो सीता जी आगे पीछे उठपटांग के विचार कर रहे थे। इतने में ही आकाश के अंदर चारणों ने हनुमान जी को सुनाते हुए कहा, अहो खलु कृतम कर्म दुर्विगाहं हनुमतां अग्निं विसृजता तीक्ष्णं भीमं राक्षससत्मनि दग्धेयं नगरी लंका साट प्राकार तोरणां जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव न। ओहो हे वानर, तुमने जो कर्म किया है ऐसा कर्म दूसरा कौन कर सकता है? इस राक्षसराज रावण के घर में तुम भी घुस गए और इसके घर में तुमने एक बड़ी बारी आग भी घुसा दी। इस राक्षस के सारे महल नष्ट हो गए और इसके स्त्री बालक वृद्ध परिवार के जन प्रजाजन सबको तुमने आकुल व्याकुल कर दिया। एक तरह से लंका जल गई है, लेकिन तुम्हारे मन में चिंता नहीं रहनी चाहिए कि सीता जली है। सीता बिल्कुल नहीं जली है, सीता सुरक्षित है। ये बात सुनकर के हनुमान जी महाराज बड़े हर्षित हुए कि वाह, इन्होंने मुझे कितनी अच्छी बात सुनाई। अब कई कारणों से हनुमान जी महाराज वहाँ बड़े प्रसन्न हुए थे, तो ऋषि वाक्यों का भी उनको स्मरण हो आया, चारणों की बात भी याद आ गई। सब कारणों को जानने के बाद हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर वहाँ पर खड़े रहे। और जब वो खूब जो है लंका जल रही थी, तब हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि ठीक है, इन लोगों ने मुझे आश्वासन तो दे दिया, लेकिन एक बार मुझे सीता के पास में जाना चाहिए और उनके दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके अशोक वाटिका में आए और उसी अशोक वृक्ष की टहनी के नीचे सीता जी बैठी हुई थी, शंकित हुई देख रही थी क्या हो रहा है, कैसे जल रहा है। वो सब उनके पास में तो आ गई नहीं थी, देख रही थी सीता जी। जानकी को जाकर देखा, अभिवाद की अब्रवीत दृष्टिया। अब वहां जाकर हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, माता जी बड़ा सौभाग्य है, मैं आपको इस अग्नि से दूर देख रहा हूं। सीता जी ने हनुमान को देखा, बड़ा सीता के मन में स्नेह पैदा हुआ। अरे हनुमान ये क्या किया बेटा तुमने, ये तो तुमने अब हर्ष में एक हर्ष में आकर उपालंब देना है बेटा, तुमने ये क्या किया, तुमने अपने पूंछ के अंदर आग लगाई थी, तुम्हारे आग लगाई थी ये सूचना तो मुझे मिली, पर उसके बाद तो तुमने देखो कितना ये कर लिया, तुम जल जाते तो, तुम्हारी पूंछ जल जाती तो, ये राक्षस को मार देते तो, तुमने कितना बड़ा खतरा ले लिया, तुमने बड़ा विलक्षण काम किया है बानर। बानर अब कैसे आए तुम?